ओम शांति। कितना सुंदर, कितना प्यारा मधुबन ये हमारा है। इसी मधुबन में एक स्वर्णिम सुबह दादी जानकी ढूंढ रही थी ब्रह्मा बाबा को। सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। यहां ढूंढा, वहां ढूंढा, मधुबन की गलियों में ढूंढा, कुटिया में ढूंढा, नहीं मिले। बाबा की दिनचर्या ऐसी थी कि 9 बजे नाश्ते के बाद 10:30 बजे तक बाबा जो आए हुए पत्र थे उनके उत्तर देते थे और 10:30 के बाद फिर घूमने निकल जाते थे। तो दादी को कुछ महत्वपूर्ण बात बाबा को सुनानी थी, तो बाबा को सब जगह ढूंढा परंतु नहीं मिले। फिर दादी हिस्ट्री हॉल में आई। हिस्ट्री हॉल जहां अब हम बैठे हैं, ये जो खिड़कियां है सभी बंद थी। खिड़कियां देख लो एक बार, ये जो सारी खिड़कियां है सारी बंद थी। एक ही खिड़की थी जो अध खुली थी, थोड़ी सी खुली थी, और दादी ने उस खिड़की से झांक कर देखा तो क्या दिखा? बाबा क्या कर रहे थे? डांस कर रहे थे अपनी ही धुन में और अपनी ही लगन की लगन में मगन। बाबा डांस कर रहे थे। कहाँ डांस कर रहे थे? यहीं पर जहां हम अब इस समय बैठे हैं। दादी अंदर आई और बाबा से पूछा, बाबा आप ये क्या कर रहे हो? तो बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा को नशा है। बाबा ने क्या उत्तर दिया? बाबा को नशा है कि अब बाबा जाकर मिचनू कृष्ण बनेगा, छोटा कृष्ण बनेगा, ऐसा नशा बाबा को है। दृश्य यहां समाप्त होता है। ये सुबह थी एक स्वर्णिम और वो है नशा था। इतनी लगन थी कि बाबा अपने ही नशे में नाच रहे थे। आज मुरली में बाबा ने एक प्रश्न पूछा है, ऐसा ही नशा सदा रहता है या भूल गए हो? आधा कल्प से भूले हुए हो, क्या अब तक भी भूले रहना है? क्या पूछा है बाबा ने? आधा कल्प से भूले थे, क्या अब भी भूले रहना है? याद स्वरूप बन जाना अर्थात भूलना बंद, भूलना समाप्त, उस स्मृति में ऐसा स्थिर हो जाना, ऐसे स्थित हो जाना कि फिर भूलना हो ही नहीं। तो ऐसा नशा, नारायणी नशा, रूहानी नशा, इलाही मस्ती जिसे कहा जाता है, तो जहां नशा है वहां इस संसार को भूलना बहुत सहज है। तो आज बाबा ने सहज पुरुषार्थ हमें बताया है। जिस स्थान पर हम आज बैठे हैं संसार का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जिस भूमि में आज हम हैं, ये भूमि साधारण भूमि नहीं है। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। रामायण में वर्णन है अयोध्या का, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा, जिस भूमि पर हे नाथ तुमने पैर रखा है, परमात्मा के पग इस भूमि पर पड़े हैं। यह भूमि साधारण भूमि नहीं है। तो आज बाबा हमें नशे की बात बता रहे हैं। आज बाबा हमें और कौन सी बातें बता रहे हैं? उड़ने की। उड़ते कौन है? फरिश्ते। और भारत में उड़ते कौन है? फरिश्ते तो भारत में नहीं होते। भारतीय शास्त्रों में कौन उड़ते है? उड़ने वाले देवता है कौन है भारत में? हनुमान। तो हम सभी कौन है? उड़ते हुए हनुमान, उड़ती हुई परिया, उड़ते हुए देवदूत। एक झरना इतना खुश था, अपनी ही मस्ती में मगन एक झरना बहा जा रहा था, गीत गाते हुए नृत्य करते हुए एक झरना चला था सागर की ओर। उसे पता था मुझे सागर में मिलना है, परंतु बीच में एक रेगिस्तान आ गया। और रेगिस्तान में पहुंचा पर उसे पता तो था कि मुझे पहुंचना है सागर तक, परंतु अब पहुंचू कैसे, क्योंकि रेगिस्तान सामने है और रेगिस्तान की रेत की सूक्ष्म रेत जो है मुझे सोख रही है। पर मुझे बढ़ना तो है परंतु आसार नहीं है, कैसे बढ़ू? पहुंचना तो पता है, नियति तो मेरी सागर से ही मिल जाना है, परंतु ये झरना अब सोचने लगा मैं कैसे पहुंचू। रेगिस्तान की रेत बोली, हवाएं तो मेरे ऊपर से उड़कर चली जाती है, तुम क्यों नहीं चले जाते? वो कहता है मैं कैसे जाऊं, मैं तो जाने की कोशिश करता हूं परंतु तुम्हारी रेत ही मुझे सोख लेती है और मैं आगे बढ़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, छलांग नहीं लगा सकता, कूद नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, कैसे दौड़ू? मैं कोई हवा थोड़ी हूं जो उड़ जाऊं। तो रेत उसे कहती है हवा तुम्हें बनना नहीं है, परंतु तुम में वो क्षमता है कि यदि तुम उस हवा में समा जाओ तो वो हवा तुम्हें उड़ा कर ले जाएगी किसी चोटी पर, और तुम बरसोगे नीचे और फिर कुछ और बनोगे और कुछ और बनके समुन्दर तक जा पहुंचोगे। परंतु घबराया झरना, कहने लगा कि क्या मैं वही रहूंगा? क्या मेरी निजता कायम रहेगी? क्या मेरा अस्तित्व खो तो नहीं जाएगा? क्या जिस गंतव्य की ओर मैं बढ़ रहा हूं वही रहेगा या मैं कहीं भटक जाऊंगा? रेत ने उसे समझाया कि नहीं, तुम रहोगे वही, परंतु किसी और नाम से पुकारे जाओगे। इसके लिए बढ़ो, और कोई मार्ग भी तो नहीं है, कैसे पहुंचोगे सागर तक? तुम्हें उड़ना ही होगा, तुम्हें अपने आप को समाना ही होगा इस हवा में, संभालो अपने आप को। वो झरना उड़ता है, समाता है अपने आप को हवाओं में, हवाएं उसे ले जाती है किसी चोटी पर दूर, बादल बनता है, फिर से बरसता है, नदी बनता है और नदी फिर समुन्दर में जा मिलती है। और तब यह झरना सोचता है कि मैं भी कैसा मूर्ख था, मैं अपनी ही अस्मिता को नहीं समझ सका, मैं तो हूं वही। परंतु घबराता था किससे? उड़ने से। उसी तरह पहुंचना चाहता था, दौड़कर, चलकर, छलांग मारकर, जंप लगाकर, परंतु पहुंच नहीं सकता था। परंतु यदि यही सत्यता थी तो रेत वो पूछता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला अपने बारे में, किसी और को मुझे कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी कि मुझे उड़ना चाहिए? रेत का एक कण सुनता है उसकी बात, अब तो वो नदी बन चुका है। रेत का एक कण उससे कहता है ये घटना केवल हम ही देखते हैं रेगिस्तान, तुम इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये घटना हमारे सामने रोज होती है, इसके लिए हमें पता है कि तुम्हें उड़कर हवा में मिल जाना है, अपने अस्तित्व को हवा में समा देना है, अपने अंश सहित हवा में विलीन हो जाना है, तब कहीं जाकर तुम ऊंच चढ़ोगे और तब फिर अपना स्वरूप बदलकर सागर में मिलोगे। यदि वो सोचता लड़ाई करने का, यदि वो सोचता कि रेगिस्तान से युद्ध करूं, तो पहुंच सकता नहीं। मार्ग कौन सा था? उड़ने का। बाबा हमें क्या चाहते हैं? बनना। बाबा चाहता है हम भी क्या करें? उड़े चेतना के उन्मुक्त गगन में, जहां चेतना देह से बंधी है नीचे, जब इससे छूटकर उड़ने लगती है, तब वो अपने निज स्वरूप को प्राप्त करती है। बाबा कह रहे हैं ऐसे उड़ता पंछी बनो, बाबा कह रहे हैं ऐसे अव्यक्त वतनवासी क्या बनो? फरिश्ता बनो। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं मुरली में? इशारा दे रहे, वरदान दे रहे, अभ्यास सिखा रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। बाबा की भाषा कौन सी है? बाबा की भाषा शब्दों की भाषा नहीं है, मौन की भाषा है, अव्यक्त भाषा है, नैनों की भाषा है। परम सत्य तक शब्दों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, परम सत्य तक भाषा द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। भाषा केवल पहुंचाती है मौन तक, मौन सत्य की ओर ले जाएगा, क्योंकि परम सत्य शब्दों को नहीं जानता, किसी भाषा को नहीं जानता, किसी स्वर, किसी आवाज, किसी सुर को नहीं जानता, वह मौन को जानता है। आज बाप दादा क्या इशारा दे रहे हैं? नैनों की भाषा द्वारा अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के इशारा दे रहे हैं। कौन सा इशारा दे रहे हैं? अव्यक्त वतनवासी इस लोक से परे स्मृति दिला रहे हैं कि तुम इस लोक के नहीं हो, यह तुम्हारा लोक नहीं है। इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने का इशारा दे रहे हैं। किसके द्वारा? नैनों की भाषा द्वारा। ये परमात्म भाषा है, ईश्वरीय भाषा है। शब्दों के बहुतायात में सत्य कहीं खो जाता है, शब्दों के वादों में सत्य खो जाता है। इसके लिए बाबा जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं वो मौन की भाषा है। तो बाबा एक तो इशारा दे रहे, फिर वरदान दे रहे हैं। कौन सा? तत्त्वम का वरदान दे रहे हैं, अभ्यास करा रहे हैं। कौन सा? कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त स्वरूप फरिश्ता स्वरूप हूं, यह अभ्यास करा रहे हैं। यहां किस लिए आए हैं? केवल कर्म करने के लिए। इस मुरली में बाबा ने फरिश्ते की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, एक के बाद हम एक परिभाषा लेंगे। सबसे पहली परिभाषा, फरिश्ता अर्थात अव्यक्त वतनवासी। फरिश्ता अर्थात फर्शवासी नहीं, अर्शवासी। फरिश्ता अर्थात तत्त्वम के वरदानी, जैसा मैं हूं वैसे तुम भी बनो। चौथा, फरिश्ता अर्थात कर्मयोगी। फरिश्ता अर्थात कर्म बंधन से मुक्त। फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रिय जीत, और फरिश्ता अर्थात कर्मातीत। चार शब्दों का प्रयोग बाबा ने किया है। सबसे पहला फरिश्ता अर्थात कर्म योगी। कर्म और योग कंबाइंड हो, अलग अलग नहीं, कर्म और योग एक हो, संयुक्त हो। जैसे बाबा ने कौन सा अपना ही उदाहरण दिया, बाप आते हैं, कर्म करते हैं और चले जाते हैं, वैसे भी तुम्हें इस देह का आधार किस लिए लेना है? सेवा अर्थ, केवल और केवल सेवा अर्थ। आए, सेवा की और उड़ गए अपने वतन में, फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहकर नीचे आना, कर्म करना और उड़ जाना। कर्म बंधन से मुक्त, देह के हिसाब किताब से मुक्त, देह का आधार लेकर मालिक बनकर कर्म करना, जब चाहो जैसा चाहो जितना समय चाहो मालिक बनकर कर्म करना और निकल जाना देह से बाहर, कर्मेंद्रिय जीत। और याद प्यार में कहा कर्मातीत। तो चार परिभाषाएं यहां पर दी है, फरिश्ता अर्थात कर्मबंधन मुक्त, फरिश्ता अर्थात कर्मयोगी, कर्म और योग अलग अलग ना हो, कर्म और योग एक हो, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है ऐसे कंबाइंड, वैसे ही ज्ञान कर्म और योग कंबाइंड हो जाए। बाबा ने और एक परिभाषा दी है फरिश्ते की, वो कौन सी? और दो परिभाषा है पावरफुल, देह और देह के संबंध से परे, देह और देह के संबंध से परे। पिंजड़े का पंछी नहीं, कौन सा पंछी? उड़ता हुआ पंछी। देह और देह के संबंध ही जैसे कि क्या है, पिंजड़ा है एक, परंतु पिंजड़े का पंछी प्रयास तब करता है उड़ने का जब उसे पता चले कि मैं पिंजड़े में हूं। हर आत्मा भी एक पिंजड़े में है, कौन से पिंजड़े में? केवल इस देह के नहीं, परंतु एक बहुत सारे और सूक्ष्म पिंजड़े है, कारागृह में हम पल रहे हैं, अपने ही संस्कारों के कारागृह में हर आत्मा फंसी हुई है, अपने ही अतीत के कारागृह में हर आत्मा फंसी हुई है, अपने ही आदतों के संस्कारों में कारागृह में आत्मा फंसी हुई है, ये भी एक पिंजड़ा है। और पिंजड़े से मुक्ति का मार्ग तो तब खुलेगा जब ये पता चलेगा कि हम कारागार में है, तब फिर किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ढूंढ ही लेंगे अपना मार्ग। सोचो किसी भवन में हम हैं और वहां पर आग लग जाए और भगदड़ मची हुई है, क्या हम किसी से पूछते हैं कहां जाना है? खुद ही भागेंगे उठ उठ के और ढूंढ लेंगे मार्ग कहां है। जब तक आग नहीं लगी है तो शांति से बैठे है वो कारागृह ही है भी वो कारागार, परंतु पता नहीं हमें कि ये कारागार है। तो जिस आदतों के वश हम हैं शायद वही हमारा कारागार है, उसी बंधन में हम हैं, उसी पिंजड़े में हम हैं, और हमारी स्थिति एक ऐसे पंछी की तरह हो गई है कि उसे आदत हो गई है अब उस कारागार में रहने की। उसे खुद तो ये संकल्प ही नहीं है बाहर निकलू, अगर कोई निकालना चाहे भी तो भी क्या करता है, तो भी छूटना नहीं चाहता है। न मालूम कैसा प्यार है इस पिंजड़े से, इन आदतों से, इस देह भान से, इस देह की इच्छाओं से और इस देह के आकर्षण से और इस देह की प्राप्ति से और इस संसार से और इस संसार की बातों से, विकारी दृष्टि और वृत्ति से, पतित दुनिया से। कोई एक स्वतंत्रता सेनानी था, जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उन्हें जज्बा होता है इंकलाब स्वतंत्रता का। एक बार पहाड़ों के बीच हो गया और उन वादियों में उन पहाड़ों में एक सराय में रुका और उस सराय में देखा एक पिंजड़ा था सोने का और उसमें एक तोता था। वो तोता निरंतर चिल्लाते रहता था स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, आजादी आजादी आजादी, और क्योंकि वो शांत जगह थी उसकी वो आवाज सारी वादियों में गूंजती थी और वो केवल थोड़े देर के लिए नहीं सुनता चिल्लाता था। इस स्वतंत्रता सेनानी तो ऐसे बहुत से तोते देखे थे कि जो चिल्लाते थे, जिनको आजादी चाहिए थी, परंतु यह जो तोता था वो सारे ही दिन भर चिल्लाते रहता था, एक ही स्वर था उसका, क्या? स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी था, किसी को भी बंधन में नहीं देख सकता था, किसी की दास्ता उसे स्वीकार नहीं थी। आधी रात को जबकि सराय का जो मालिक है सोया था, वो उस पिंजड़े के पास जाता है और वो पिंजड़े का दरवाजा खोलता है और उस तोते से कहता है कि उड़ो जाओ, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूं, तुम ही तो चिल्लाते रहते हो दिन रात, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो वो तोता और जोर से अंदर का जो बार, जिसको क्या कहेंगे, जो दंडी होती है अंदर की, उसको और जोर से पकड़ के रखता है। वो उसको कहता है, अरे छूटो, अरे छूटो, मैं तुम्हें छोड़ने आया हूं, कोई देखेगा नहीं, ये तुम मुक्त हो जाओगे आज। वो और जोर से पकड़ता है। वो कहता है, अरे हाथ हाथ डालता है उसके अंदर। वो तोता उसको चोंच मारता है। वो कहता है कि तुम चोंच भले मारो, पर मैं तुम्हें मुक्त करके ही रहूंगा आज। और वो उसको पकड़ता है, निकालता है बाहर और उड़ाता है आकाश में और जाके आराम से सो जाता है, बहुत ही संतोष के साथ कि आज मैंने किसी आत्मा को मुक्त कर दिया। और सुबह होती है और सुबह वही आवाज उसे सुनाई देती है, स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसे लगता है शायद वही पंछी, वही तोता किसी पेड़ पर बैठकर या कहीं मुक्त गगन में ये आवाज कर रहा है। आंखें खोल कर देखता है तो वह तोता कहाँ रहता है, उसी पिंजड़े में, दरवाजा खुला है। न मालूम कैसा ये प्यार है पिंजरे से। छुड़ाने वाला अगर हाथ डालकर छुड़ाना चाहे भी तो क्या करती है आत्मा, चोंच भी मारने को तैयार है। छुड़ाने वाला क्या कहता है, साकार मुरली, बाप तुम बच्चों से भीख मांगते हैं। साकार मुरली है, बाप तुम बच्चों से भीख मांगते हैं, बच्चे पवित्र बनो, इस विकारी देह से उपराम हो जाओ। फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंध से परे, फरिश्ता अर्थात नया जीवन, फरिश्ता अर्थात ब्राह्मण, फरिश्ता अर्थात पुराने सारे हिसाब किताब चुकतु। हिसाब किताब चुकतु करने में होशियार हो या ढीले हो, टीचर क्या समझती है, महाराष्ट्र वाले क्या समझते हैं, बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। फरिश्ता अर्थात वह जो बाप के प्यारे है, वह जो बाप उनका प्यारा है, बाबा के वह प्यारे है, दोनों एक दूसरे के प्यार में समाए हुए हैं, ऐसे जो है वो फरिश्ता है। फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता जीवन, फरिश्ता लाइफ, ये जिस जीवन का लक्ष्य है। कर्मेंद्रिय जीत, कर्मयोगी, कर्मातीत, ये इस जीवन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को कभी भूलना नहीं है, देह में रहते हुए देह से उपराम रहना, इस व्यक्त वतन में रहते हुए उस वतन का अनुभव अभी ही किया जा सकता है और किसी समय नहीं। फरिश्ता अर्थात फरिश्तेपन की भाषा कौन सी नहीं होती है, मेरा मेरा की भाषा फरिश्ते की भाषा नहीं है, मेरा स्वभाव मेरा संस्कार यह भी क्या है, बंधन है, यह भाषा फरिश्ते की भाषा नहीं है, मेरा सो तेरा यह फरिश्ते की भाषा है। फरिश्ता अर्थात यह क्यों, यह कैसे, परिस्थिति में कैसे रहेंगे उपराम, ये क्यों ये कैसा, ये भी भाषा फरिश्तों की भाषा नहीं है। तीन प्रकार की परिस्थिति, चार प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है बाबा ने, कौन कौन सी, कौन बताएगा माताओं में से, चार प्रकार की परिस्थितियों का वर्णन किया है बाबा ने, ऐसी चार परिस्थितियां आएगी ब्राह्मणों के पास। एक तो शरीर की, जिससे शरीर से परिवर्तन, शरीर की परिस्थिति, एक तन की परिस्थिति, दूसरा प्रकृति की परिस्थिति, तीसरी दूसरों के संस्कार, और चौथी स्वयं के संस्कार, लौकिक और अलौकिक। सबसे खतरनाक कौन सी है इन चारों में से, स्वयं के संस्कारों की परिस्थिति, ये सबसे खतरनाक परिस्थिति है, क्योंकि वो जंजीरें किसने पहनाई, अगर किसी और ने जंजीरें पहनाई होती तो हम तलवार निकालकर उसे काट दे, पर ये जंजीरें हमने ही पहनाई है और हम इसे श्रृंगार कहते हैं, आभूषण का नाम हमने इसे दिया है। अब अपने ही आभूषण को कैसे काटे, अपने ही बड़े ही प्रेम से हमने ही स्वयं को माला चेन पहना के रखी है, कैसे काटेंगे अपने ही हाथों से। दूसरों की हम काट सकते हैं, पर अपने ही कैसे काटोगे। और बड़े प्रेम से सजा के रखा है उसे, जंजीरों को कैसे काटोगे। तो चार प्रकार की परिस्थितियां, चाहे परिस्थितियां आए परंतु क्या हो जाना है, परिस्थितियों में उड़ जाना है, उड़ता पंछी बन जाना है। यह क्या, यह क्यों, यह कैसे, ये फरिश्ते की भाषा नहीं है। सहज साधन, सहज पुरुषार्थ, हर समस्या का समाधान एक ही है। कौन सा? उड़ता पंछी बनो। हर परिस्थिति को पार करने का साधन एक ही है। कौन सा? उड़ता पंछी बनो, अव्यक्त फरिश्ता बनो। जो पिंजड़े का पंछी है वो दिखाता तो है बहुत सुखी है ऊपर से, पर क्या वास्तव में वो सुखी है? तेरा दर्द ना जाने कोई, कवि प्रदीप की कविता है, बहुत अच्छी सुनाई। कवि प्रदीप ने कविता लिखी है, पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द ना जाने कोई। ये दुनिया क्या है? पत्थर। उसी कविता में आगे है, ये दुनिया है पत्थर, क्या समझेगी तेरी पीड़ा को, क्या समझेगी तेरे दर्द को। अपने दिल के छालों को छुपाए रे पंछी तेरा दर्द ना जाने कोई। तो पंछी का दर्द होता है परंतु मुखौटा पहनकर दिखाता है कि हम बहुत खुश है, परंतु कारागृह में है, सलाखे है, दर्द है, पीड़ा है, वेदना है। स्वयं को कौन मुक्त कर सकता है इस पिंजड़े से? हम स्वयं ही मुक्त कर सकते हैं। स्वयं स्वयं को मुक्त कर देना है इस पिंजड़े से। तो फरिश्ता अर्थात, इतनी परिभाषा बाबा ने फरिश्ते की आज सुनाई है। फरिश्ता अर्थात अर्श निवासी, फरिश्ता अर्थात तख्त निवासी, फरिश्ता अर्थात ब्राह्मण, फरिश्ता अर्थात देह और देह के संबंध से परे न्यारा, फरिश्ता अर्थात विकारी वृत्ति दृष्टि से परे, विकारी दुनिया से परे, फरिश्ता अर्थात बाप के प्यार में समाया हुआ, बाप उसके प्यार में और वो बाप के प्यार में समाया हुआ, फरिश्ता अर्थात कर्म योगी, कर्म और योग अलग अलग ना हो। अलग कौन करता है, कौन अलग करता है? माया अलग करती है, परंतु नॉलेज के आधार से, नॉलेज फुल बन अनुभव के आधार से माया का जन्म कब और कैसे होता है वह वो जानता है। माया के जन्म की कहानी सुनाई है आज बाबा ने। माया के जन्म की कहानी, माया की उत्पत्ति कैसे होती है, कहां वो जन्म लेती है। जैसे उदाहरण दिया है, कौन सा? कोई यदि कमजोर हो जाए तो बीमारी आती है, यहां पर भी माया आती है। तो कमजोरी है कौन सी? अगर कमजोरी कारण है तो निवारण क्या है? मुरली। यदि कमजोरी बीमारी है तो इलाज क्या है, उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? मुरली। तो मुरली क्या है फिर? मुरली क्या है? शक्तिशाली भोजन है। और कैसा भोजन है? ये थाली कैसी है? सर्व शक्तियों से संपन्न ये थाली है। इसको खाने से आत्मा क्या बन जाती है? मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाती है, कमजोर नहीं बनती। परंतु एक है खाना और दूसरा है हजम करना, एक है सुनना और दूसरा है मनन करना, एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना, एक है जानना और दूसरा है जानकर चलना, एक है सुनना और सुनकर मनन करना। तो मुरली क्या है? शक्तिशाली भोजन है। और मुरली क्या क्या है, 50 बातें सुनाओ। मुरली वह लाठी है जिसको पकड़कर तुम परम धाम में जाते हो और परम धाम से उसी लाठी के सहारे सतयुग में उतरते हो, कभी बाबा ने साकार मुरली में कहा है। पहला। दूसरा, मुरली क्या है? आंखें है तुम्हें, ये नेत्र मिला हुआ है, मुरली अर्थात ज्ञान का ही तीसरा नेत्र है। तीसरा, मुरली क्या है? मुरली वह प्रकाश है इस संसार के अंधकूप में। मुरली क्या काम कर रही है? प्रकाश का कार्य कर रही है, तेज रोशनी ओज, आलोक का कार्य कर रही है मुरली। जब अंधकार में कहीं कुछ समझ में नहीं आता है, कहाँ चलना है, कहाँ जाना है, किस कोई पूछ कोई बताने वाला नहीं है, तब मुरली क्या करती है, जीवन में प्रकाश लाती है। तो मुरली है प्रकाश। और बताओ, मुरली श्वास है, ब्राह्मणों का श्वास है, ब्राह्मणों के दिल की धड़कन है ब्राह्मणों का श्वास, ब्राह्मणों का जीवदान, ब्राह्मणों के दिल की धड़कन, हार्ट बीट, हार्ट थ्रॉब, ब्राह्मणों का जीवन, संजीवनी बूटी है, ब्राह्मणों के लिए खुराक है, ब्राह्मणों के लिए दवाई है, ब्राह्मणों के लिए हेल्थ टॉनिक है, ब्राह्मणों के लिए इंजेक्शन है, टैबलेट है, गोली है, सिरप है, और क्या है, कैप्सूल भी है, क्या है, तलवार है, शस्त्र है, तो अस्त्र भी है। माया, जैसे कल की मुरली में था ना वरदान, मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूँ, शास्त्र शस्त्रधारी शक्ति हूँ, काली रूप, और क्या है मुरली, मुरली सूरमा है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। जब तक ये काजल नहीं लगाओ, ये सूरमा नहीं लगाओ, कुछ भी नजर नहीं आता है, धुंधला सा दिखाई देता है। और क्या है मुरली, दाल चावल, क्या बोला, च्यवनप्राश, चौप चीनी, मुरली क्या है, चौप चीनी, और क्या है मुरली, आपने क्या कहा, च्यवनप्राश, तो हेल्थ टॉनिक है, च्यवनप्राश है, चौप चीनी जिसको बाबा कहते हैं, और आत्मा की खुराक है, आत्मा का भोजन है, और कुंती माता क्या है मुरली, मिरर है, एक दर्पण है, एक आईना है, जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, कहाँ तक हो, किस कितने पानी में पहुंचे हो। मुरली पंख है, इस पंख को लगाकर उड़ सकते हो, उड़ती फिरू मस्त, और क्या है मुरली, क्या है लोरी है, क्या करती है, सुलाती है क्या, जगाती है, अज्ञान की नींद से जगाती है, कुंभकरण की नींद से जगाने वाली लोरी है, वह लोरी है जो क्या करती है, बाप की गोद में सुलाने वाली लोरी है। अच्छा, और मुरली क्या है, मुरली बाबा के महावाक्य है, मुरली भगवान के महावाक्य है, मुरली आर द वर्शंस ऑफ गॉड, मुरली ही सच्ची सच्ची गीता है, मुरली ही ब्राह्मणों का सच्चा सच्चा शास्त्र है, मुरली ही सबसे बड़ा शास्त्र है, संसार का शिरोमणि है शास्त्रों में भी मुरली, और मुरली क्या है, मुरली ही भगवान का लव लेटर है, ऐसा प्रेम पत्र, ऐसा प्रेम पत्र जो भगवान स्वयं लिख रहा है अपने हाथों से। संसार में किसी को प्रेम पत्र आता है तो छुप छुप के जाके पढ़ते हैं, बाथरूम में जाके पढ़ते हैं, तो टॉर्च में पढ़ते हैं, तो मोबाइल के प्रकाश में पढ़ते हैं, तो ये पत्र भी हमको भगवान की ओर से आया है। कभी ब्रह्मा बाबा ने दादी जान की, नहीं, कभी दादी जान की जब पूना में थी, तो एक बार दादी जान की बड़े ही उमंग से आई मधुबन में, और बाबा को बताने लगे कि हमारे सेंटर पर जो भाई सब है, इतने उमंग वाले हैं और इतने सारे ज्ञान में चलते हैं और सब इतने ज्ञान की धारणा में पक्के, आपको क्या बताऊं। बाबा ने कहा, ये हो नहीं सकता। बाबा ने क्या कहा, ये हो नहीं सकता। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहते हैं, द पाथ इज नैरो, ये मार्ग सरकरा, इसमें सब नहीं चल सकते, द पाथ इज नैरो। तो बाबा ने कहा दादी से, अब जब सेंटर जाओगी तब एक बात कहना कि सेंटर पर ये घोषणा करना कि कल से मुरली क्लास बंद, फिर देखना क्या होता है। तो दादी गई और जैसा बाबा ने कहा था उसी अनुसार दादी ने कहा क्लास के बाद कि कल से मुरली क्लास बंद, गेट नहीं खुलेगा। तो फिर दूसरा दिन हुआ, गेट बंद था, कोई भी नहीं आया मुरली में, और दादी ने थोड़ी देरी से जब दरवाजा खोला तो देखा एक भाई वहां बैठा है। उस भाई को दादी ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो उस भाई ने कहा, सतयुग की स्थापना हो रही है, बिना मुरली क्लास के उस सतयुग में जाने के हम अधिकारी बन ही नहीं सकते। जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा मैं नहीं जाऊंगा। तब कहीं दादी ने उसे अंदर लिया और मुरली सुनाई, और बाबा को जब समाचार सुनाया तो बाबा ने कहा बस वो एक ही था धारणा वाला, बाकी जो सारे थे तुम्हारे वो कौन सा भाई होगा हमें तो पता नहीं, पर कितना बड़ा भाग्यवान होगा वो। तो मुरली अर्थात मुरली जियदान है, मुरली संजीवनी बूटी हो गया। वही नहीं सुनाओ, जो नहीं सुना है वो सुनाओ। मुरली भगवान के महावाक्य है, भगवान की वाणी है, गॉड्स वर्ड, गॉड्स वर्शन। मुरली जादू है, ये एक ऐसा जादू है कि ये जादू लगते ही कुछ के कुछ हो जाता है व्यक्ति। शावर है। मुरली क्या है वो बताओ। मुरली बाबा की समझानी है, मुरली बाबा की दी हुई समझानी है। बाबा की क्या है, शक्ति है। और मुरली क्या है, प्रश्न अच्छे से सुन लो, मुरली क्या है वो बताओ। माया से क्या करती है, मोड़ देती है। मुरली माया से मोड़ देती है। मुरली माया से, माया की परछाई के लिए छत्र छाया है, माया की दुश्मन है। और क्या है, क्या है, ज्ञान वीना है और शुद्ध संकल्पों का खजाना है। ये देखो कितनी अच्छी पॉइंट है, माया मुरली क्या है, शुद्ध संकल्पों का खजाना है। मुरली स्वमान का खजाना है, मुरली नए विचारों का खजाना है, नए विचार, नए संकल्प, नए प्लानिंग। बाबा की शिक्षाएं, मुरली भगवान का वरदान है इस समय। मुरली बाप की पालना है इस समय, बाप के तीन रूप, बाप टीचर और सदगुरु, बाप की पालना, टीचर की शिक्षा और सदगुरु का वरदान। मुरली पुल है, इस पुल से जाकर क्या हो जाओगे, पार कर जाओगे विषय वैतरणी नदी को। मुरली एक कहानी है, बाप आए हैं तुम्हें कहानी सुनाने, वंस अपॉन अ टाइम। मुरली क्या कहानी सुनाते हैं, बाप आए हैं तुम्हें इस सृष्टि के आदि मध्य और अंत की कहानी सुनाने। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है धर्मस्थापक, धर्मनेता, साधु सन्यासी, योगी, तपस्वी, महात्मा, जो कि इस संसार के, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की कहानी सुनाए है। ये कहानी केवल तुम जानते हो, बाप हिस्ट्री और ज्योग्राफी इस सृष्टि की सुना रहे है। तो ये कहानी है, एक सुंदर कहानी है, बाप की श्रीमत है। ये तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, मुरली है बाप की श्रीमत, मुरली है बाप की मत, मुरली है ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचते ऊंच मत, मुरली है वह मत, वह विचार जो इस संसार में आज तक किसी को पता नहीं था, वह रहस्यमयी, वह गोपनीय विचार। मुरली कसौटी है, किस बात की, किसको कसना है उसमें, स्वयं को, स्वयं को परखने के लिए। और मुरली गंगा है, वह नदी है, उफान पर है नदी, कि जिसमें तुम्हारे विकार सारे धुल जाएंगे। यह पतित पावनी गंगा है, वह पतित पावनी नहीं है, यह पतित पावनी गंगा है। और आरती बहन क्या है मुरली, मुरली एक गीत है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। मुरली एक संगीत है, मुरली एक ध्वनि है, मुरली भगवान की ध्वनि है, भगवान की आवाज है मुरली, भगवान की आवाज, अनहद नाद जिसे कहा जाता है संसार में, वह नाद। कई सारे अलग अलग प्रकार के नाद है, एक होता है आहत नाद, जो कि दो वस्तुओं का जब संघर्ष घर्षण होता है तब उत्पन्न होता है। एक दूसरा नाद इस सृष्टि में है जिसे अनहद नाद कहा जाता है, जो कि किसी फ्रिक्शन से उत्पन्न नहीं होता है, जिसे ऋषि मुनियों ने अनहद नाद कहा है। मुरली वह अनहद नाद है ईश्वर का, अमर कथा है, तिजरी की कथा है और सत्य नारायण की कथा है। कौन सुना रहा है अमरनाथ, द लॉर्ड ऑफ इमोर्टैलिटी, द लॉर्ड ऑफ डिविनिटी, अब तुमको अमर कथा सुना रहा है। तो मुरली अमर कथा है, सत्य नारायण की कथा है, तिजरी की कथा है। और मुरली नशा है, कौन सा नशा, जो पी ले बस वही जाने, ऐसा नशा है कि पीने के बाद उतरता ही नहीं है, चढ़ा ही रहता है निरंतर। निगेटिव को पॉजिटिव बनाने वाला मुरली शुभी रस है। ऐसी ऐसा फल है जिसमें ना गुटली है और ना जिसमें छिलका, कुछ भी त्यज्य नहीं है इसमें। कौन सा वाहवाक्य छोड़ दे, क्या कहे कि ये कुछ काम का नहीं है, बाबा ने ऐसे ही बोल दिया होगा? क्या ऐसा कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता है। दादी जानकी ने कभी कहा है, मुरली का एक एक शब्द लिख लो इसको, मुरली का एक एक शब्द आत्मा को शक्ति देने वाला है। मुरली का एक एक शब्द ऐसा फल जिसमें ना गुटली है और ना जिसमें छिलका है, रसयुक्त रसदार फल है। ऐसा अद्भुत फल मुरली वह सुगंध है, ईश्वर की सुगंध है, ईश्वर की खुशबू है। छप्पर प्रकार का भोग है। छप्पर प्रकार का भोग इसके सामने कुछ नहीं है। तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। और क्या है मुरली? वो तो हो गया भगवान का। हर प्रश्न का उत्तर है, हर क्वेश्चन का आंसर है, हर समस्या का समाधान है। कितने हो गए? 70 हो गए। क्या मुरली न्यूज़पेपर है? टाइम वर्ल्ड टाइम्स है। मुरली क्या है? वर्ल्ड टाइम्स। वो तो है टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस। ये है संगम एक्सप्रेस, ये है संगम एक्सप्रेस। इसमें बैठो और गाड़ी वाया परमधाम सीधा सतयुग में, फर्स्ट जनरेशन श्री कृष्ण के साथ। जमुना के कंठे में जो स्टेशन है वहीं पर रुकती है। तो मुरली है वर्ल्ड टाइम्स, इसमें सब कुछ जान सकते हो। वर्तमान संसार की क्या स्थिति है, क्या होने वाला है, क्या हो गया, सब कुछ सारा विस्तार इस मुरली में है। अब की व्यवस्था क्या है, धर्म सत्ता में क्या हो रहा है, राज सत्ता में क्या हो रहा है, विज्ञान सत्ता में क्या हो रहा है, हर स्थान की जानकारी, हर एक चीज की जानकारी मुरली में। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसमें बाबा भूल गए बताना। एनसाइक्लोपीडिया है वो तो, 36 वॉल्यूम है ब्रिटिश ब्रिटानिया एनसाइक्लोपीडिया। इसके तो वॉल्यूम्स पे वॉल्यूम चल ही रहे है, 36 से। वो 36 वॉल्यूम, ये 36 से चल रहे है वॉल्यूम। मुरली ही जीवन है, मुरली ही श्वास है, मुरली ही प्राण है, मुरली ही आधार है, मुरली ही सपोर्ट है, मुरली ही आश है, मुरली ही विश्वास है, मुरली ही प्राण है, मुरली ही आधार स्तंभ है, मुरली ही नींव है और मुरली ही बुनियाद है इस ब्राह्मण जीवन की, बीज है। इतना महत्व हरेक अपने बुद्धि में रखता है, सभी से प्रश्न है अब, इतना महत्व इसका है, यदि वो ये सब है तो, यदि नहीं है तो फिर दूसरी बात है। पार्टियों से मुलाकात, फर्स्ट पार्टी, कौन हो तुम? हीरो पार्टधारी। सारा संसार हमें देख रहा है, विश्व की स्टेज पर है, डबल हीरो है हम, डबल नायक। एक तो हीरो पार्ट और दूसरा हीरे जैसा जीवन। हमारा हर कदम कैसा हो, ऐसा कि दुनिया वाले क्या कहे, वंस मोर एनकोर, वाह वाह कहे, और हम भी अपने पार्ट को देखकर क्या कहे स्वयं को, वाह रे मैं, वाह रे ड्रामा, वाह रे मेरा पार्ट। एक भी कदम आगे पीछे नीचे ऊपर न हो, अगर है तो हीरो नहीं, एक भी कर्म साधारण है तो हीरो नहीं। इसके लिए हर कर्म हमारा कैसा हो, श्रेष्ठ हो, इसका अनुभव हो, केवल जानना नहीं जानकर चलना। तो हम सब कौन है, हीरो पाटधारी। श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन कौन सा है, ट्रस्टी समझना, ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, ट्रस्टी अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, ट्रस्टी अर्थात मैंपन नहीं, ट्रस्टी अर्थात गृहस्थीपन तो श्रेष्ठता से नीचे गिराने वाला है, ट्रस्टी अर्थात मोहजीत, ट्रस्टी अर्थात निर्मोही, ट्रस्टी अर्थात सदा सुखी श्रेष्ठ, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोह। मोह में क्या है? दुख है। कितना अच्छा महावाक्य है, मोह में दुख है, परंतु दुख से न मालूम कैसा प्यार है। दुख के इस पिंजड़े में ऐसा प्यार है कि कोई निकालना चाहता है दुख से, परंतु फिर आकर दुख के पिंजड़े में बैठ जाओ, पिंजड़ा बंद करो और फिर जोर जोर से पुकारो, हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ। ऐसी कैसी विडंबना है। किसने बनाया पिंजड़ा? हमने स्वयं। और फिर अंदर जाकर चिल्लाते रहो, छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो जो प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, उनके लिए बाबा ने क्या कहा, कैसे रहना है? यहां पर लगभग सभी प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, तो ये मुरली खास आपके लिए। इसके पहले कि हम वो बात की चर्चा करें, सभी अलर्ट होकर बैठना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूं, इस देह को, देह की दुनिया को, विकारी संसार को, दृष्टि वृत्ति को त्याग कर, मैं के संसार को छोड़कर, मेरा मेरा छोड़कर, अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनना है। बाप दादा के सामने जाना है और बाबा से वरदान लेना है, तत्त्वम। दादी चंद्रमणि जब पहली बार लंदन गई थी और वहां के ब्राह्मणों को उन्होंने वो मिले थे, तो उन्हें आश्चर्य लगा कि यहाँ के जो गृहस्थ में रहने वाले ब्राह्मण हैं, कैसे इन्होंने अपने घर को सेवाश्रम बना रखा है। उनके घर के वाइब्रेशंस का उन्होंने वर्णन किया कि दादी ने, जानकी दादी ने कैसी उनको पालना दी होगी कि वहां का एक एक गृहस्थ जो है आश्रम जैसा लगता है वह घर। तो आज बाबा भी यही बात कह रहे हैं, कैसे रहना है गृहस्थ में, न्यारे और प्यारे बनकर। घर में कोई आ जाए तो उसे क्या अनुभव हो, अलौकिकता का अनुभव हो। कौन सी फीलिंग आए, अलौकिकता की फीलिंग आए, लौकिक वाइब्रेशंस, लौकिक वायुमंडल, लौकिक वातावरण का अनुभव ना हो। जो भी देखे तो क्या कहे, साधारण नहीं है, असाधारण है। कैसा वातावरण हो, जैसा वातावरण सेवा केंद्र में होता है, जैसा वातावरण मंदिर में होता है, और हम एक बात और जोड़ते हैं, जैसा वातावरण मधुबन की इस भूमि पर में होता है। जो वातावरण मधुबन में है, जो वातावरण मंदिर में है, मंदिर में कोई भी व्यक्ति दुष्विचार के साथ, कुविचार के साथ प्रवेश नहीं करता। वहां जाते ही विचारों का परिवर्तन होता है उस पवित्रता में, उस पवित्र वातावरण में विचारों में बदलाव आता है। वो लोग तो भक्ति कर रहे हैं, वहां पर जड़ मूर्तियां हैं, हम सब चैतन्य में मूर्तियां हैं। तो हमारे घर, हमारा घर कैसा हो जाए, मंदिर हो जाए। हमारा घर का वातावरण कैसा हो जाए, सेवा केंद्र का जैसा वातावरण होता वैसा हो जाए। जैसे उसमें कोई कमी पेशी नहीं देख सकते सेवा केंद्र में, यहां भी स्थिति और स्थान को ठीक करो। जैसे वहां सोचते हो कि ऐसी चलन, चाल चलन अगर कोई चलता है तो सोचते हो ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। ऐसी का अर्थ बाबा ने उत्तर में विस्तार तो नहीं किया, वो समझ लो, ऐसी चाल चलन किसी स्वभाव संस्कार के वश यदि कोई चलता है तो हम सोचते कि यहां ऐसा नहीं होना चाहिए, परंतु हमारे घर को हमने देखा है, हमारे घर में भी तो ऐसा कर्म हम नहीं कर सकते, बाबा ने संकल्प दिया है। तो घर का वातावरण कैसा हो, श्रेष्ठ हो, दिव्य हो, अलौकिक हो, लौकिकता उसमें नजर ना आए। कोई भी आए तो उसे फील हो मैं कहां आ गया हूं, यहां दिव्यता अनुभव हो इस वातावरण में, ऐसा वहां का वातावरण हो तो सबसे श्रेष्ठ उसमें संकल्प है। जो मधुबन का वातावरण है तो सभी माताओं को और जो अधर कुमार और जो गृहस्थ में रहते हैं उनके लिए एक संकल्प दे रहे हैं, क्योंकि अब इस मधुबन की भूमि पर हो तो कल सुबह अमृत वेला, शायद कुछ दिनों में सब अपने अपने घर जाएंगे या कुछ समय के बाद जाएंगे, मधुबन में सर्वश्रेष्ठ चार धाम है। इस चार धाम में जब कल बैठो तो सोचो कि दिल की पेटी में यहां के वाइब्रेशंस हम डाल रहे हैं, चारों ही स्थानों के वाइब्रेशन दिल की इस डिब्बी में, दिल की इस पेटी में भर दो कल सुबह ही अमृत वेले, और फिर जब घर जाओगे उछाल दो उसे, ताकि घर के वातावरण में वही पवित्रता, वही दिव्यता, वही अलौकिकता, वही पारलौकिकता, वही अपार्थिव भाव आ जाए, देह का भाव छूट जाए, वही दिव्यता हमारे घर में भी भर जाए। जो दिव्यता का अनुभव यहां होता है, जो अशरीरीपन का अनुभव यहां होता है, वहां भी जो भी हमारे घर आए उन्हें यह अनुभव हो। तो अपने घर को मंदिर बना देना है, अपने घर को सेवा स्थान बना देना है, सेवा का केंद्र बना देना है, तीर्थ बना देना है। इस संसार के शोरगुल में वो एक ऐसा स्थान बन जाए, ऐसा देवालय, ऐसा शिवालय, ऐसा शक्ति स्तंभ बन जाए कि लोग वहां पर आए और वहां के वातावरण में आते ही हमने कुछ कहा ही नहीं, केवल वहां आते ही शांति की अनुभूति करे। अपने घर का वातावरण वैसा बनाना है, अपने ऑफिस का वातावरण वैसा बनाना है। चाहे ऑफिस में कितने ही अज्ञानी हो और कितने ही विरोधी और कितने ही विकारी हो, परंतु हम कौन हैं? जैसे वह अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती है, बाबा ने कहा, वैसे तुम्हारी पवित्रता की खुशबू चारों ओर फैले। यही सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप है, यही पवित्र प्रवृत्ति है। जहां हम है, सोचो मधुबन का वो खजाना हमारे हृदय में है, और वो खुशबू, वो वाइब्रेशन, वो प्रकंपन हमसे निकल रहे, हर आत्मा जो हमारे संपर्क में आएगी उसे यह अनुभव हो रहा है। यह अभ्यास कल सुबह जो जाने वाले हैं, या कुछ समय रहने भी वाले हैं, वो भी करे। जो रहने वाले हैं वो भरते जाए जाने तक, ताकि स्टॉक ज्यादा हो जाए। तो मुरली का सार, बाबा ने हमें फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने के लिए कहा। बाबा ने हमें अपने हीरो पार्ट, अपने डबल हीरो पार्ट में स्थित होने के लिए कहा। बाबा ने हमें ट्रस्टी बनकर रहने को कहा, नष्टो मोह होने के लिए कहा। बाबा ने हमें कर्मयोगी बनने के लिए कहा, और मुरली के महत्व को बताया, और जिसमें भी सबसे मुख्य है मनन। केवल कनरस नहीं, लास्ट संडे मन रस, मनन करके शक्तिशाली बनना, स्वयं को शक्तिशाली बनाना। जितना हमने पॉइंट्स गिनाए, यदि मुरली ये सब है तो हमारा कितना ध्यान है उसके ऊपर। क्या मुरली में हमें नींद आती है? क्या बुद्धि कहीं भटकती है? यदि मुरली सुनते समय पर्स, कल की मुरली अगर मित्र संबंधी याद आते हैं, तो ये भी क्या है? विघ्न है। क्या हम इस यज्ञ में विघ्न रूप बन रहे? मददगार छोड़कर हम विघ्न रूप बन रहे? कहां कहां हमारी बुद्धि भटकती है, इसकी चेकिंग करनी है। तो इस मुरली के ये कुछ होमवर्क है। ऐसे अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्वरूप, बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ता स्वरूप बच्चों को, ऐसे मेरा तो एक बाबा, ये डेफिनेशन, ये शायद परिभाषा हम छूट गई हमारी। मेरा तो एक बाबा, दूसरा मेरा ना कोई, ऐसे बच्चों को सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले बच्चों को, ऐसे कर्मेंद्रियजीत कर्मयोगी कर्मातीत यह अभ्यास करने वाले बच्चों को, ऐसे सर्व बंधनों से मुक्त बच्चों को, कर्म बंधनों से मुक्त बच्चों को, कर्म में के संबंध में आने वाले बच्चों को, ऐसे बाप समान तत्त्वम के वरदानी बच्चों को, क्या बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।